चैतन्य चरितामृत से पढ़ेंगे आदि लीला अध्याय 14 श्लोक संख्या 5। वंदे चैतन्य कृष्णस्य बाल्य लीला मनोहराम लौकिकीमपि तामीश चेष्टया वलितांतराम। वंदे चैतन्य कृष्णस्य बाल्य लीला मनोहराम लौकिकीमपि तामीश चेष्टया वलितांतराम। मैं उन श्री चैतन्य महाप्रभु की बाल लीलाओं को सादर नमस्कार करता हूँ जो स्वयं भगवान कृष्ण हैं। यद्यपि ऐसी लीलाएं सामान्य बालक की लीलाओं जैसी लगती हैं, किंतु उन्हें भगवान की विविध लीलाओं के रूप में समझा जाना चाहिए। अनुवाद को दोहराइएगा। मैं उन श्री चैतन्य महाप्रभु की बाल लीलाओं को सादर नमस्कार करता हूँ जो स्वयं भगवान कृष्ण हैं। यद्यपि ऐसी लीलाएं सामान्य बालक की लीलाओं जैसी लगती हैं, किंतु उन्हें भगवान की विविध लीलाओं के रूप में समझा जाना चाहिए। ज्ञान हरे कृष्णा। कल हम चैतन्य रूपी भक्ति कल्प वृक्ष के बारे में चर्चा कर रहे थे और आज से हम चैतन्य महाप्रभु के विविध लीलाओं का वर्णन आरंभ करेंगे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में संक्षेप में इन लीलाओं का वर्णन करते हैं और बताते हैं कि वास्तव में वृंदावन दास ठाकुर इन्होंने चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं का वर्णन विस्तार में किया हुआ है और उन्होंने लीलाओं की संख्या बढ़ाई ज्यादा नहीं और कई जगह उन्होंने ज्यादा विस्तार में नहीं लिखा, क्योंकि उनका विचार ये था कि मैं जो ग्रंथ लिख रहा हूँ वो ज्यादा भारी नहीं हो जाना चाहिए, पन्नों की संख्या ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं, तो मैं तो केवल वृंदावन दास ठाकुर का नित्य दास हूँ, उनके भोजन के अवशेष को चबाना ही मेरा काम है, इसलिए जो उन्होंने वर्णन किया है मैं केवल संक्षेप में बता रहा हूँ और जहाँ उन्होंने थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ी थी उन जगहों को मैं भर रहा हूँ, थोड़ी बहुत लीलाओं का मैं उन लीलाओं का वर्णन कर रहा हूँ। वास्तव में वृंदावन दास ठाकुर जिन्होंने के चैतन्य भागवत लिखा, वो उन्होंने चैतन्य लीला का आस्वादन किया और उनके वर्णन से चैतन्य महाप्रभु के जो लीलाएं हैं वो और भी अधिक मधुर लगने लग रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के वर्णन के लिए दो प्रमुख ग्रंथ हैं, चैतन्य भागवत और चैतन्य चरितामृत। और कई ग्रंथ अवश्य हैं, लेकिन ये दो प्रमुख माने जाते हैं। सबसे पहले कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये बताते हैं कि हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। और जिस ध्यान से हम कृष्ण लीला का श्रवण करते हैं उसी ध्यान से हमें चैतन्य लीला का भी श्रवण करना चाहिए। जो लाभ हमें कृष्ण लीला का श्रवण कीर्तन करने से होगा वही लाभ हमें गौरांग महाप्रभु के सुंदर लीलाओं का श्रवण कीर्तन करने से भी प्राप्त होगा। चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे इस भौतिक संसार में, इस पृथ्वी लोक पर 1486 साल में, और वो रहे 1534 तक। इस तरह से 48 साल रहे यहाँ और अलग अलग प्रकार की लीलाएं उन्होंने की। पहले 24 साल वो गृहस्थ आश्रम में रहे और इनका वर्णन, ये लीलाएं, इनको आदि लीला कहते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। और इसके बाद के 24 साल हुए वो संन्यास आश्रम में बीते, क्योंकि 24 साल में की उम्र में उन्होंने संन्यास आश्रम को ग्रहण किया। इन 24 सालों के भीतर पहले 6 साल इनको मध्य लीला कहते हैं, क्योंकि इस समय संन्यास लेने के तुरंत पश्चात चैतन्य महाप्रभु अलग अलग जगह भ्रमण करने हेतु गए। थोड़े समय दक्षिण भारत में, थोड़ा समय बंगाल में, थोड़ा समय वृंदावन मथुरा में, इस तरह से 6 साल वो भ्रमण करते रहे। और उनके मुख्य जो लीलाएं हैं वो इस मध्य लीला के दौरान हुए, और इसलिए मध्य लीला सबसे अधिक विस्तार में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने वर्णन किए हैं। और इन 6 सालों के बाद में जो बाकी 18 साल रहे उनमें चैतन्य महाप्रभु नीलाचल में जगन्नाथपुरी में रहे, और यहाँ पर केवल कृष्ण प्रेम का आस्वादन करते रहे। उनके संग अनेक भक्त रहते थे, और कई ऐसे भी भक्त थे जो बंगाल से और अन्य जगह से आते थे, थोड़े समय के लिए उनका संग करते थे 2-4 महीने, खास करके चातुर्मास के समय, और फिर वापस चले जाते थे अपने अपने गांवों में। तो जिन 18 सालों में जो लीलाएं वहां चैतन्य महाप्रभु ने किए उनको अंत लीला कहते हैं, शेष लीला। तो इन अंत लीलाओं में पहले 6 सालों में भगवान ने कृष्ण प्रेम का आस्वादन किया भक्तों के संग में, श्रवण कीर्तन करके और खास करके हरिनाम का संकीर्तन करके, जैसे कि वो रथ यात्रा के आगे करते थे हर साल। और बाकी जो शेष 12 साल रहे उनके प्रकट लीला के, उनमें वो केवल अपने निकट के पार्षदों के संग में रहकर वो कृष्ण भक्ति के बहुत ही गूढ़ तत्वों का आस्वादन करने लगे, और केवल इनके संग बैठकर कृष्ण लीला, कृष्ण नाम का स्वाद लेते रहे, गहराई में जाते रहे, इतने गहराई में कि उनके निकट के पार्षदों के अलावा कोई और उनको समझ नहीं सकता था। स्वरूप दामोदर गोस्वामी और रामानंद राय इनके 2 प्रमुख पार्षद रहे इन आखिरी 12 सालों में, और हमेशा वो कृष्ण प्रेम में उन्मत्त रहते थे, और जो भक्त नहीं थे वो समझ नहीं पाते थे इन प्रकार के प्रेम के लक्षण जो कि चैतन्य महाप्रभु प्रकट करते थे। इस तरह से 48 साल पूरे चैतन्य महाप्रभु ने बिताए, और फिर जगन्नाथपुरी में ही छोटा गोपीनाथ मंदिर में वो अप्रकट हुए। वैसे चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का विभाजन 4 भागों में किया जा सकता है। पहला भाग है बाल्य लीला। बाल्य लीला उनके जन्म से 5 साल के आयु तक कहा जाता है। उसके बाद में औगुंड लीला, जो कि 5-6 साल से शुरू होता है, 10 साल की आयु तक चलता है। उसके बाद में किशोर लीला, जो कि 11 साल की उम्र से आरंभ होकर 15 साल की उम्र तक चला, और उसके बाद में यौवन की लीला, जो 16 वर्ष की उम्र से आरंभ होकर उनके संन्यास लेने तक चला, अर्थात 24 साल तक। इस तरह से आदि लीला में ये 4 विभाजन होते हैं। तो इस साल गौर पूर्णिमा के महोत्सव में आदि लीला के आगे शायद नहीं बढ़ पाएंगे। तो आदि लीला के अलग अलग लीलाओं का वर्णन हम करेंगे और इनका स्वाद लेने की चेष्टा करेंगे। बाल लीला भगवान की बड़े असाधारण, अलौकिक और अद्भुत होते हैं, इसलिए यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी शुरुआत में ही चेतावनी हमें दे रहे हैं कि हालांकि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने अपने बाल लीलाएं एक साधारण बालक की तरह किए, फिर भी हमें जानना चाहिए कि ये बिल्कुल दिव्य है। जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल में लीलाएं की अपने बाल्य अवस्था में, उसी तरह से चैतन्य महाप्रभु ने भी मायापुर में, नवद्वीप में ऐसे ही दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन किया। बिल्कुल पैरेलल, दोनों साथ साथ चलते हैं। तो जिस तरह से कृष्ण भगवान की बाल्य लीलाएं भी दिव्य हैं और उनका श्रवण करने से हमें शुद्ध भक्ति प्राप्त हो सकती है, जन्म मृत्यु के चक्कर से हम छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं, ठीक उसी तरह से चैतन्य महाप्रभु की बाल लीलाओं का श्रवण कीर्तन करने से भी वही लाभ हमें मिल सकता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीं तदमाश्रितं परम भावं अजानन्तो मम भूत महेश्वरं। जो मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, वो मेरे लीलाओं को नहीं पहचानते, वो मुझे नहीं पहचानते। और जब मैं एक साधारण मनुष्य के रूप में आता हूँ, मानुषीं तनु आश्रितम, अवजानन्ति, मुझे समझते नहीं है, सोचते हैं कि मैं उन्हीं के तरह एक साधारण व्यक्ति हूँ, लेकिन वास्तव में परम भाव, मेरे परम भाव को वो नहीं जानते। वो नहीं जानते कि मैं महेश्वर हूँ, सारे प्राणियों का स्वामी हूँ, मैं परम सत्य, परम भगवान हूँ, वो इस बात को नहीं जानते हैं। तो यही तथ्य चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं को और विशेष करके बाल लीलाओं को के बारे में हमें समझना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु की आविर्भाव या प्राकट्य की लीला हम कल करेंगे, इसलिए आज हम केवल चैतन्य महाप्रभु के बाल लीलाओं का श्रवण अब करेंगे। जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे तो बहुत ही जल्द उन्होंने अपनी उत्थान लीला शुरू की। आप जानते हैं, खास करके आप ऐसे जो गृहस्थ हैं, कि बच्चा धीरे धीरे से अपने पेट से फिर अपने पीठ पे आ जाता है, पीठ से आकर फिर धीरे धीरे घुटनों पे आ जाता है। तो ये लीला चैतन्य महाप्रभु ने की, और उस समय उन्होंने ऊपर देखना आरंभ किया और अपने चरणों के तलवों पर जो चिन्ह है वो दिखाना आरंभ किए। वैसे चैतन्य महाप्रभु के हस्तों पर और उनके चरण कमलों पर ये विष्णु के निशानी थे। जैसे हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि किसी को अगर भगवान का अवतार मानना चाहिए तो कई शर्त पूरे होने चाहिए। उनमें से एक ये है कि उनके हस्तों पर, हस्त कमलों पर और उनके चरण कमलों पर ऐसे चिन्ह होने चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु के चरणों के तलवों पर भी अनेक तरह के निशान थे और उनमें से प्रमुख चिन्ह पांच थे। पहले एक ध्वज या झंडा, दूसरा वज्र, तीसरा शंख, चौथा चक्र और पांचवा मीन अर्थात मछली। तो ये पांच चिन्ह जो है वो प्रदर्शित करने लगे जब वो अपने पीठ पर बैठे। उत्थान शब्द ये भी हो सकता है कि जब बच्चा उठने का प्रयास करता है, दीवार को या खंभे को पकड़ के उसका सहारा लेकर उठने का प्रयास करता है। तो जैसे एक साधारण बालक के शरीर में परिवर्तन होता है और धीरे धीरे से वो बढ़ता है, ठीक उसी तरह से चैतन्य महाप्रभु भी इसकी नकल करने लगे। हालांकि हर अवस्था में भगवान भगवान ही रहते हैं, चाहे बाल रूप में हो या युग अवस्था में हो, भगवान की बुद्धि, शक्ति, योग्यता में कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन भक्ति के अलग अलग रसों का आदान प्रदान करने और इनका आस्वादन करने के लिए भगवान बिल्कुल ऐसे ही एक साधारण मनुष्य की तरह कार्य करते हैं। जैसे साधारण मनुष्य के शरीर में परिवर्तन होता है, ऐसे ही महाप्रभु के शरीर में परिवर्तन प्रतीत हुआ। तो इस समय वो खड़े होने लगे, बैठने लगे, और जब ये चिन्हों की निशानी सब जगह देखने लगे जगन्नाथ मिश्र, तो वो कहने लगे कि ये ऐसे होगा कि हमारे घर में जो बाल गोपाल है शालिग्राम शिला के साथ में, वो शायद रात में बालक का रूप लेकर चल रहे हैं सब जगह, इसलिए बाल गोपाल के पद चिन्ह है। ये तो हमारे बच्चे के पद चिन्ह ऐसे कैसे हो सकते हैं। तो इस तरह से वात्सल्य भाव में आकर जगन्नाथ मिश्रा सोच रहे थे कि ये तो वास्तव में बाल गोपाल जी की लीला है, ये तो मेरे बच्चा है, ये इसके क्या, ये क्या कर सकता है। तो सोचते थे कि वास्तव में बाल गोपाल की मूर्ति जो है वो एक चलती फिरती हुई है उनके घर में जब वो सब सो रहे होते हैं। और जब महाप्रभु का प्राकट्य हुआ जो कि ब्रह्मा जी के एक दिवस में होता है, कितने करोड़ों करोड़ों सालों में एक बार, तो देवताओं ने सोचा कि ये अवसर हमें खोना नहीं चाहिए। तो सारे देवी देवता गण आए, और जैसे आप जानते हैं कि कलयुग में साधारण जन साधारण की क्षमता नहीं होती है कि वो देवी देवताओं को देख सके। पहले सत्य त्रेता द्वापर युगों में देवी देवताएं पृथ्वी लोक पर आया जाया करते थे और जन साधारण के बीच में मिलजुल कर भी आते थे, बातचीत भी करते थे और यहाँ के लोगों को ठीक तरह से देख भी पाते थे। लेकिन कलयुग में देवी देवताओं ने यह समझ लिया कि पृथ्वी लोक के निवासी अभी बिल्कुल अयोग्य हो गए हैं, इसलिए उनसे हमें अदृश्य रहना ही अच्छा है, इसलिए वो अदृश्य रहते हैं। उनके अंदर ये शक्ति रहती है कि अपने आप को वो प्रकट कराएं या अप्रकट कराएं। तो जब नवद्वीप में सारे देवता देवी देवता आए तो अदृश्य रूप में वो इधर उधर जगन्नाथ मिश्रा के घर में घूमते फिरते रहे, हमेशा रहते थे वहां पर। और ऐसे चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर बताते हैं कि यही देवी देवता नवद्वीप के निवासियों के ऊपर थोड़े हंसी मजाक करने लगे, जोक करने लगे उनके साथ में। कैसे? वो बीच बीच में बिल्कुल सूक्ष्म रूप में प्रकट होते थे और लोगों को दिखाई पड़ता था कि कुछ यहाँ हिल रहा है, कुछ चल रहा है, लोग सोचते कि कोई भूत है, वो घबरा जाते थे। वास्तव में ये देवी देवता अपने सूक्ष्म रूप में जा रहे थे, आ रहे थे, वहां कीर्तन उनका चल रहा था। तो सभी लोग बोलते थे कि अरे यहाँ भूत है, और फिर वो लोग तुरंत विष्णु नाम स्तोत्र शुरू करते थे, विष्णु रक्षा स्तोत्र, उनके बालक के निमाई के रक्षा के लिए, और कोई देवी के स्तोत्र बोलते थे, तो कोई अलग अलग प्रार्थनाएं बोलते थे, और इस तरह से देवी देवता मजाक करते थे। कभी कभी जब कमरे के अंदर कोई नहीं होता था तो अंदर से वो आवाज कर देते थे, इधर उधर घूमते फिरते, और फिर बाहर बैठे हुए निवासी जो सोचते हैं अंदर चोर आया है, और इस तरह से तुरंत वो नरसिंह नरसिंह कृष्ण कृष्ण करके पुकारते थे, सोचते थे कि जब हम आवाज करेंगे तो यहाँ से चले जाएंगे। तो इस तरह से देवी देवतागण वहां आते थे, महाप्रभु जी का दर्शन करते थे और उनके सुंदर मुखारविंद को देखकर वो दिव्य आनंद की अनुभूति करते थे। इस तरह से नवद्वीप जो है वो देवी देवताओं का निवास स्थान बन गया प्राय, क्योंकि सारे देवी देवता वहां आया करते थे। जब चैतन्य महाप्रभु केवल 4 महीने के थे और अपने पीठ पे लेटे हुए थे, इधर उधर थोड़ा कुछ घुटनों पे चल सकते थे कम, उस समय एक दिन उन्होंने देखा कि मेरी माता शची माता कमरे में नहीं है, तो उन्होंने सोचा कि मुझे कुछ शरारत करनी चाहिए। तो अपने शक्ति से उन्होंने इस कमरे में जो भी कुछ था, गेहूं था, दाल था, चावल था, सब दिखा दिया, इधर उधर कर दिया सब कुछ, और जो भी मक्खन तेल वगैरह था उसको भी बिल्कुल जमीन के ऊपर बिखरा दिया बिल्कुल। और फिर जब समझा कि सची माता आ रही है आवाज सुनकर, तुरंत चुपके से लेट गए जैसे 4 महीने का बालक लेट जाता है, और लेटते हुए रोने लगे, और सची माता ने आया उनको शांत किया, बच्चे बालक को, और फिर कमरे में इधर उधर देखा कि अरे ये सब क्या हो गया, अब ये सब ऐसे बिखरा हुआ था और ऐसा कार्य चार महीने का बालक किसी भी हालत में नहीं कर सकता, ना तो उसकी शक्ति ऐसी होती है, ना बुद्धि होती है, ना उसकी पहुंच हो सकती है वहां तक। कहां कहां से, कहां चावल रखा हुआ था, कहां गेहूं, कहां शक्कर, ये वो अलग अलग जगह में थे सब। भले चार महीने का बालक उठ के इन सारे चीजों को, डब्बों को हिलाकर, ढक्कन निकालकर इधर उधर कैसे कर सकता है। ये चार साल का, चार महीने का बच्चा है, इधर सोया हुआ है, रो रहा है। तो उन्होंने सोचा ये तो अद्भुत बात है, हो सकता है कि कोई भूत आए और भूत ने देखा कि हम इस बालक के ऊपर आक्रमण करें, लेकिन हमने इतने सारे स्तोत्र वगैरह उसकी रक्षा के लिए जब किए थे कि मंत्रों की वजह से, स्तोत्रों की वजह से ये बालक बच गया। और ये भूत वगैरह आए, उन्होंने सोचा बालक को तो हम छू नहीं सकते, लेकिन कुछ तो कुछ उत्पाद करके तो जाना चाहिए। क्रोधित हो गए भूत, बच्चे को हम छू नहीं सकते हैं, मंत्रों के द्वारा वो सुरक्षित है, तो उन्होंने ये सब किया होगा। सारा घर उल्टा पुल्टा करके चले गए वो लोग। तो फिर से वो अलग अलग प्रकार के स्तोत्र बोलते और फिर सोचते कि निमाय को वास्तव में भगवान ने ही बचाया, और कोई दूसरे निवासी नवद्वीप के लोग थे वो सोचते हाँ हमारी दुर्गा देवी ने बचाया, जो दुर्गा देवी के उपासक थे। आप जानते हैं बंगाल में दुर्गा देवी के बहुत सारे उपासक हैं। तो इस तरह से निमाय पंडित, उनका अभी तक नाम निमाय पड़ा नहीं था, तो उस बालक ने ऐसे सुंदर सुंदर लीलाएं करना आरंभ किया। तो एक बार जब शची माता दूध पिला रही थी बालक को, चैतन्य महाप्रभु को, निमाय को, तो उस समय उन्होंने देखा कि उनके चरण कमलों में ये चिन्ह है, विष्णु के परिचिन्ह है, जो कि नीचे जमीन पे दिखाई पड़ गए थे। और उन्होंने जगन्नाथ मिश्रा से बताया कि जो चिन्ह हम समझ रहे थे कि ये बाल गोपाल के हैं, ये तो हमारे निमाय के पद चिन्हों में है, पद कमलों में है। तो जगन्नाथ मिश्र भी बड़े आश्चर्यचकित हो गए, और शची माता के पिता नीलांबर चक्रवर्ती, जो कि बहुत बड़े विद्वान ब्राह्मण थे, ज्योतिष थे, उनको उन्होंने बुलाया और ये बात उनसे कही। और फिर नीलांबर चक्रवर्ती हंसने लगे, कहने लगे हाँ इस बात का अनुमान मैंने इस बालक के जन्म पर ही लगाया था, जब उसकी जन्म कुंडली भी मैंने देखी थी तो मैंने ये समझ लिया था, वास्तव में इसके हस्तों में, हस्त कमलों में और चरण कमलों में जो चिन्ह है वो साक्षात नारायण के चिन्ह है। इसलिए हमें समझना चाहिए कि ये नारायण की तरह ही ये कार्य करेगा। जिस तरह से गर्ग मुनि ने बाल कृष्ण के बारे में ऐसे भविष्यवाणी की थी, उनके पद चिन्हों को देखकर, उनके जन्म कुंडली को देखकर उन्होंने बताया था कि ये उस बालक का परिचय कराया था नंद महाराज से, ठीक उसी तरह से नीलांबर चक्रवर्ती ने भी इस बालक का सही सही परिचय कराया और कहा कि वास्तव में सारे संसार का दुख मिटाएगा और बड़े होकर ये वैष्णव धर्म का प्रचार करेगा दुनिया भर में, और उज्जवल इसके कार्य रहेंगे और बहुत सालों तक लोग इसका, इन कार्यों का चिंतन मनन करते रहेंगे। इसलिए जल्दी से हमें इसका नामकरण करना चाहिए, नामकरण का संस्कार जो है वो करना चाहिए। तो बड़े धूमधाम से नामकरण का संस्कार बनाने की योजना की व्यवस्था की गई। नवद्वीप के सारे निवासी वहां आने लगे, सुंदर सुंदर स्त्रियां बड़े ऐसे तेजस्वी अच्छे अच्छे कपड़े जहने पहनकर आए वहां पर, और वो कहने लगे कि पहले तो इसका जन्म जो है नीम पेड़ के नीचे हुआ, दूसरी बात अभी ये आखिरी बच्चा है, इसके बाद कोई बच्चा नहीं होगा, क्योंकि वास्तव में शची माता को पहले 9 कन्याएं हुई थी, लेकिन 9 के 9 उनका देहांत हो गया जन्म के तुरंत बाद, और इसके बाद में विश्वरूप नाम के पुत्र इसने जन्म, इन्होंने जन्म लिया। विश्वरूप ने आगे जाके संन्यास लिया और ये निमाय पंडित के बड़े भाई थे, तो वो पहले पुत्र और ये दूसरे। तो महिलाएं कहने लगे कि ये तो आखिरी ये भी बच्चा है, इसलिए इसे निमाय को बुलाना चाहिए। तो दूसरे जो ब्राह्मण विद्वान वहां उपस्थित थे वो कहने लगे कि वास्तव में जब से इस बच्चे का जन्म हुआ है, हम देखते हैं कि सारे राज्य भर में, प्रांत भर में सारे शुभ लक्षण प्रकट हो रहे हैं। जो अकाल था समाप्त हो गया,
खेत हरे भरे हो गए हैं और सब जगह लोग खुश लग रहे हैं, ये केवल इस बालक के प्रभाव की वजह से है। इसीलिए इसका नाम हम विश्वंभर रखेंगे, जो सारे ब्रह्मांड का पालन पोषण करने वाला है। जिस तरह से प्राचीन काल में नारायण ने स्वयं जन्म लेकर प्रकट होकर इस ब्रह्मांड का पालन पोषण किया था, ठीक उसी तरह से ये बालक भी सारे ब्रह्मांड का पालन पोषण करता है। इसलिए इसका पहला नाम रखेंगे विश्वंभर और उसका दूसरा नाम होगा निमाय। इस तरह से नामकरण की लीला हुई और निमाय अपने बाल लीलाएं करते रहे। एक बार आंगन में जब वो खेल रहे थे, अपने घुटनों पे चल रहे थे, तो वहां पर एक सांप आया, तो सबके आंखों के सामने निमाय ने उस सांप को अपने हाथ में ले लिया और सभी हैरान हो गए, भयभीत हो गए। और फिर वहां पर कोलाहल मच गया कि अरे निमाय के पास में सांप आया, निमाय ने सांप को छू लिया है। और सबकी आंखों के सामने नहीं केवल निमाय ने उस सांप को हाथ में रखा, लेकिन उस सांप को गोल आकार में करके उस सांप के ऊपर वो लेट गया। और निमाय जैसे ही लेट गए, आराम से उस सांप के ऊपर लेट रहे थे और सभी लोग भयभीत होकर वहां से हिल नहीं पाए। देखकर ये दृश्य, अद्भुत दृश्य को, वास्तव में सांप अनंत शेष थे। अनंत शेष पे चाहते थे कि मैं भी आकर महाप्रभु मेरे आराध्य देव की मैं भी सेवा करूं। तो जिस तरह से अनंत शेष विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु और महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु को वो शयन के रूप में रहते हैं, तो इसी तरह से निमाय को कायक्षिया बनकर अनंत शेष आए थे। तो उस समय जब कोलाहल मच गया तो चुपके से वो सांप वहां से चलने लगा, और जब बाल निमाय वहां उसके पीछे चले हाथ आगे करके, तो सभी लोग पीछे पीछे आके उन्होंने हाथ पकड़ लिया और कहा कि हमारा निमाय बच गया, बच गया। लेकिन वो जान नहीं पाए कि वास्तव में ये सांप कौन था और इस बालक का संबंध उस सांप के साथ में क्या है, क्योंकि भगवान की योग माया ने उनके समझ को ढक लिया था। क्योंकि अगर वो जानते थे कि वास्तव में अनंत शेष है, कि ये भगवान स्वयं है, तो उनको लीला में इतना स्वाद नहीं आता। इस तरह चैतन्य महाप्रभु अलग अलग तरह के लीला करते रहे। उनके बाल लीला में एक बहुत प्रमुख लीला ये है कि उन्होंने पड़ोस के सारे महिलाओं के द्वारा नाम संकीर्तन कराया। और ये कैसे कराया, उन्होंने एक बहुत सुंदर तरकीब सीखी, जानबूझकर वो जोर जोर से रोने लगते और चाहे जो कुछ भी करे रोना बंद नहीं करते थे। सब लोग हैरान हो जाते थे कि कैसे इसके रोना बंद कर दें। तो एक बार किसी महिला ने हरी हरी कहना शुरू कर दिया बच्चे के रोने को बंद करने के लिए। हरी हरी सुनते ही बाल निमाय ने अपना रोना बंद कर दिया और सुंदर सी मुस्कान दिखाई उनको। और इसको देखकर महिलाएं समझ गए कि जब भी हम हरी हरी बोलेंगे तो ये रोना बंद कर देगा। तो इस तरह से निमाय, बाल निमाय बार बार से रोते थे ताकि सारे पड़ोस की महिलाएं आकर हरी हरी बोलेंगी और रोना बंद कर देंगे। तो इस तरह से बाल निमाय बार बार ऐसे रोते थे और सारी महिलाएं बार बार वहां आकर इस रोने को रोकने के लिए हरि का नाम का उच्चारण करते थे। इस तरह से वृंदावन दास ठाकुर बताते हैं कि पड़ोस में हमेशा हरि का नाम गूंजता रहता था, नाम संकीर्तन गूंजता रहता था। जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे फाल्गुन महीने के पूर्णिमा के दिन, जो कि कल वो तिथि आएगी, और जिस दिन चंद्र ग्रहण भी था, तो क्योंकि चंद्र ग्रहण भी था और पूर्णिमा फाल्गुन महीने का पूर्णिमा थी, इसलिए सभी लोग हरी हरी उच्चारण कर रहे थे। तो वृंदावन दास ठाकुर बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के पहले ही उन्होंने नाम को प्रकट कराया, हरि नाम को प्रकट कराया, जिससे ये संबोधित किए, जिससे ये उन्होंने समझाया संसार को कि वास्तव में उनका काम था इस हरि नाम का प्रचार करना। इसलिए उनके पहले हरि नाम को उन्होंने प्रकट कराया। और वृंदावन दास ठाकुर बताते हैं कि जन्म से पहले ही उन्होंने लोगों के नाम से हरि नाम का उच्चारण शुरू किया करवाया और फिर बाल लीला के दौरान भी लोगों के मुख से हरि का नाम का उच्चारण करवाया और आगे चलते तो हरि नाम के संकीर्तन का आंदोलन का उद्घाटन तो उन्होंने किया ही। तो इस तरह से पड़ोस के जो भी महिलाएं थी वो दिन भर हरी 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 उच्चारण करते रहे और चैतन्य महाप्रभु उनको बख्शीश देते थे और उनके सुंदर मुखारविंद से हंसी और उनके मुस्कान को दिखाकर। और निमाय के मुस्कान को देखकर सभी महिलाओं को दिव्य आनंद की अनुभूति होती थी और उनके सारे दुख कष्ट सब सारे मिट जाते थे केवल उसके मुस्कान को देखकर। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु लीला करते रहे, अपने घुटनों पर चलते रहे, फिर धीरे धीरे से चलना भी सीखा और थोड़ी देर बाद जब थोड़े बड़े हो गए थे तो उनके मित्र भी हुए और पड़ोस के बच्चों के साथ में खेलना भी शुरू किया। और आप जानते हैं कि छोटे बच्चे जब आपस में खेलते हैं तो मस्ती भी बहुत करते हैं, शरारत भी बहुत करते हैं, इधर उधर जाके उत्पात करते हैं। तो उसी तरह से निमाय ने भी करना आरंभ किया, दूसरों के घर में जाके कभी कुछ चोरी कर लेते, कभी कुछ उल्टा पुल्टा कर लेते, कभी कुछ बर्तन तोड़ देते और कभी कभी बच्चों के साथ में कुश्ती करते, उनको पीट देते और बड़े शक्तिशाली से आके है भगवान तो उनको पीट देते। तो ऐसे जिस तरह से गोकुल में कृष्ण भगवान के खिलाफ शिकायत आती थी माता यशोदा के पास में, ठीक उसी तरह से शशि माता के पास में भी शिकायत आती थी कि आपका बच्चा जो है बहुत शरारत करता है, हमारे यहाँ आकर सारे हमारे मटके जो है तोड़ देता है और जब हम उसको पकड़ते हैं और उसको डांटते हैं तो इतने सुंदर ढंग से मीठे स्वरों में वो हमारी क्षमा याचना करता है, हमारे पैर पकड़ता है, कहता है कि मैं अभी भविष्य में ऐसा कभी नहीं करूंगा, तो हमारा दिल पिघल जाता है, उसे छोड़ देते हैं, फिर अगले दिन आकर और हमारे नए मटके तोड़ देता है। तो इस तरह से बाल लीला बाल निमाय की चलती रही और बच्चे भी आकर कभी शिकायत करते थे कि ये हमारे भोजन चुरा लेता है, हमें पीट देता है। तो कई बार शची माता उनको डांटती, तुम क्यों जाकर दूसरे के घर में चोरी करते हो, दूसरों के घरों में जाते क्यों हो, क्या तुम्हारे घर में कोई चीज किसी चीज की कमी है, ठीक जिस तरह से यशोदा माता कृष्ण को डांटती थी। और तुम्हारे मित्रों को तुम पीटते क्यों हो, उनसे झगड़ा क्यों करते हो, शांति से खेल नहीं सकते क्या तुम। फिर डांट के क्रोध में शची माता अपने कान के लिए चली जाती और फिर निमाय क्रोधित होकर किसी अंदर कमरे में जाकर अपने ही घर में सारे मटके तोड़ देते और फिर शची माता आती और फिर निमाय को अपने गोदी में लेकर उनको शांत कर देती। फिर निमाय शर्मा जाते और फिर बोलते हाँ मेरी गलती हुई, मैंने ही सब तोड़ा था। इस तरह से निमाय पंडित तो नहीं हुए थे तब तक, क्या निमाय ऐसे लीलाएं करते रहे। तो एक बार ऐसे हुआ कि शची माता ने निमाय को थोड़ा संदेश दिया और खोआ जो भी दूध का जो बनता है अन्नकाश, दूध और चावल का बना हुआ होता है, तो उनको एक कटोरी में लाके दिया और कहा खाओ। और तो शची माता अपने काम घरे हुए कामों में व्यस्त रही। तो बाद में उन्होंने आश्चर्यचकित होकर देखा कि निमाय मिट्टी खा रहा है। तो तुरंत हैरान होकर शची माता निमाय के पास आई और कहने लगे हाय हाय तुम क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें संदेश दिया खोआ दिया खाने के लिए और उसको छोड़ के तुम मिट्टी खा रहे हो, क्या हो गया तुम्हें। तो निमाय केवल छोटा सा बालक थे, निमाय उस समय छोटे से बालक थे, लेकिन कहने लगे कि इसमें मेरा क्या कसूर है, ये जो अन्न है ये भी तो मिट्टी का ही परिवर्तित रूप है, चाहे वो अन्न हो चाहे वो मिट्टी हो, रूप तो एक ही है, पदार्थ तो एक ही है और ये शरीर भी मिट्टी का दूसरा परिवर्तित रूप है, तो इसमें वैसे मैं मिट्टी भी खाऊं और अन्न भी खाऊं तो इसमें क्या अंतर है, दोनों एक ही के परिवर्तित रूप है। तो शची माता बोलने लगी कि तुम्हें किसने ये सब सिखाया है, ये ज्ञान योग जिससे कि तुम मिट्टी खाते हो ये किसने सिखाया तुम्हें, ये बिल्कुल गलत है। फिर उन्होंने समझाया दार्शनिक दृष्टि से निमाय को, कहा कि देखो हालांकि इसका परिवर्तित रूप है, ये अन्न भी मिट्टी का परिवर्तित रूप है, लेकिन फिर भी अंतर है। हम जब बीज बोते हैं जमीन में जमीन से फिर इसका पालन पोषण पौष्टिक आहार मिलता है इस बीज को, फिर वो पौधा बन के फिर वृक्ष बन जाता है। तो इस पौधे को या वृक्ष के फल को खाने से एक परिणाम होता है, हम हृष्ट पुष्ट हो जाते हैं, इससे शरीर का पोषण होता है। लेकिन जब हम सीधे मिट्टी को खाते हैं तो शरीर में बीमारी आ जाती है, हम कमजोर हो जाते हैं। तो हालांकि दोनों एक दूसरे के परिवर्तित रूप हैं, फिर भी इनका परिणाम अलग होता है। तो हर एक वस्तु को अपने अपने प्रयोग से परिणाम से पहचानना चाहिए। अगर मैं मिट्टी का कोई मटका बना देती हूँ तो उस मटके में पानी भर के इधर उधर ले जा सकती हूँ, लेकिन अगर मैंने मिट्टी को मिट्टी के रूप में ही रखा, मिट्टी के रूप में उसको परिवर्तित नहीं किया और उसमें अगर मैं पानी डालूंगी तो क्या वो साधारण जमीन के ऊपर पड़ा हुआ मिट्टी, क्या वो पानी को, हम उस मिट्टी को उठाएंगे तो पानी साथ में आएगा? नहीं, पानी तो नीचे चला जाएगा। तो जिस तरह से साधारण मिट्टी और एक मिट्टी के मटके में अंतर होता है, दोनों के कार्य अलग होते हैं, उसी तरह से साधारण मिट्टी खाने में और अनाज खाने में अंतर होता है। तो ऐसे शची माता ने उनको बहुत अच्छे ढंग से समझाया। फिर चैतन्य महाप्रभु ने समझा, हाँ ये आत्म साक्षात्कार का ज्ञान मुझे पहले के नहीं सुनाया तुमने, अभी मैं समझ गया कि मैं जो कर रहा था वो गलत था, आज से मैं मिट्टी नहीं खाऊंगा, मैं केवल जो भी आप खिलाएंगे पिलाएंगे मैं खाऊंगा। तो उसके बाद में शची माता ने दूध पिलाया बाल निमाई को और फिर निमाई बड़े आनंद से वो लीला करते रहे। एक बार ऐसे हुआ कि जगन्नाथ मिश्रा के घर में एक बहुत ही शुद्ध ब्राह्मण भक्त आए। ये ब्राह्मण वास्तव में सारे जगह भ्रमण करते रहते थे, गोपाल षडक्षर गोपाल मंत्र का जाप करते थे हमेशा, और अपने हृदय में ही हमेशा कृष्ण का स्मरण करते थे। उनके साथ में बाल गोपाल जी की मूर्ति हुआ करती थी और शालिग्राम शिला, और इन दोनों को एक थैली में रख के उस थैली को अपने गले में लटकाकर वो इधर उधर घूमते फिरते थे और हर जगह कृष्ण कृष्ण नाम का उच्चारण करके बहुत ही कृष्ण प्रेम का दिव्य आनंद का आस्वादन करते रहते थे। तो उनके शरीर के तेज को देखकर जगन्नाथ मिश्र तुरंत समझ पाए कि ये भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं, कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, ये विशेष ब्राह्मण है, कोई बहुत पहुंचे हुए हैं आध्यात्मिक जीवन में। तो उन्होंने उनका आदर सत्कार किया, उनको एक ऊंचा आसन दिया, उनके पैर धोए, उनके चरण धोए खुद, जिस तरह से अतिथि का सत्कार करना चाहिए, खास करके ऐसे शुद्ध भक्तों का, ये दिखाया जगन्नाथ मिश्रा ने। हालांकि वो स्वयं भगवान के पिता के रूप में आए, लेकिन फिर भी अपने ही उदाहरण से उन्होंने ये सब दिखाया। तो जब अच्छी तरह से आदर सत्कार किया, उनका मीठे शब्दों से उनका स्वागत किया, फिर उन्होंने कहा उस ब्राह्मण से कि अभी मैं आपके लिए भोजन की व्यवस्था करता हूँ। तो ब्राह्मण ने कहा ठीक है, जैसा आप चाहें। तो जगन्नाथ मिश्र और घर के अन्य सदस्यों ने रसोई घर को पूरी तरह से स्वच्छ कर दिया और उनके लिए सारे तरकारी अनाज वगैरह सब तैयार रखे और ब्राह्मण से कहा कि अब आप पका सकते हैं, आप रसोई कर सकते हैं। तो ब्राह्मण ने रसोई घर में प्रवेश किया और फिर पकाना आरंभ किया। भगवान श्री कृष्ण को भोग चढ़ाए बिना वो कुछ भी नहीं खाते थे, चाहे वो कितने भी भूखे क्यों न हो, पहले भोग चढ़ाते थे उसके बाद नहीं खाते थे। तो इस तरह ब्राह्मणों की आदत हुआ करती थी कि पहले जमाने में जो ब्राह्मण थे वो इधर उधर घूमते थे, वो अपने हाथों से ही खाते थे, किसी दूसरे को बनाने नहीं देते थे। तो इस तरह से उन्होंने खाना पकाना शुरू कर दिया और जैसे ही अनाज और सारी सब्जियां सब तैयार हो गई तो उन्होंने अपने बाल गोपाल की मूर्ति शालिग्राम शिला के सामने सारे भोग को रख दिया और बाल गोपाल जी के सामने बैठकर ध्यान में बैठे थे और अपने ध्यान में बाल गोपाल जी से प्रार्थना कर रहे थे कि आइए आप और कृपा करके इस नैवेद्य को स्वीकार कीजिए। और ठीक उसी समय निमाई वहां पहुंच गया और निमाई ने अपना हाथ तुरंत उस भोग में डाल दिया और वहां से अन्न लेकर वो खाने लगे। और जब ब्राह्मण ने देखा तो हाय हाय कहा, अरे अरे बहुत सब खराब हो गया, इस बालक ने आकर नैवेद्य होने के पहले ही इसमें हाथ डालकर इसने मुंह में डाल दिया, अब ये दूषित हो गया, हाय हाय हाय। इस हाय हाय को सुनकर, हाहाकार को सुनकर जगन्नाथ मिश्र दौड़ के आए वहाँ, और जब उन्होंने देखा कि क्या हुआ है तो तुरंत डांटने के लिए निमाई के पीछे भागे, क्रोधित होकर कि अरे बेवकूफ क्या किया तुमने, और निमाई तो वहां से भागे चले गए। और उस समय घबरा कर वो ब्राह्मण जगन्नाथ मिश्रा के पीछे आए कि मिश्रा जी ऐसे मत कीजिए, ये तो बासू बच्चा है, देखो क्या मालूम, विवेक बुद्धि इतनी नहीं है, क्या जाने वो ब्राह्मण की सबसे ज्यादा विवेक बुद्धि इस बालक में है, ये तो सारे विवेक बुद्धि के स्रोत है, इन्हीं से तो दूसरों को विवेक बुद्धि आती है। तो बोलने लगे, ये तो बालक है, बच्चा है, थोड़ा बहुत गलती हो भी जाती है तो इसमें क्या बुरी बात है, बच्चों को नहीं मारना चाहिए, आप विद्वान है, ज्ञानी है, आप बड़े सभ्य है, इसलिए आप इसको मत मारिए, आपके लिए शोभा नहीं देता, उचित नहीं है आपके लिए। तो जगन्नाथ मिश्र जी ने अपना सर टंगाया, बड़े शर्मिंदा थे कि इन्होंने इतना परिश्रम किया, इतने सारे व्यंजन बनाए, भगवान को भोग चढ़ा ही रहे थे, तो हमारे बच्चे ने आके सब नष्ट कर दिया। तो ब्राह्मण ने कहा, कोई बात नहीं, घर में आपके जो फल होंगे सब्जियां होंगी मैं उनको भोग चढ़ाकर मैं खा लूंगा, अभी कुछ पकाऊंगा नहीं, किंतु लगता है कि कृष्ण भगवान यही चाहते हैं कि आज मैं अन्न नहीं खाऊं तो मैं फल फूल से संतुष्ट हो जाऊंगा। तो जगन्नाथ मिश्र जी ने कहा, कृपा करके ऐसा न करें, थोड़ा कष्ट का हम आपको सारे सामग्री फिर से दे देंगे, ये सारे सामग्री लेकर आप कृपा करके दूसरी बार पकाइए, इस बार हम देखेंगे ये बालक आपको तकलीफ नहीं देगा। तो दोबारा सारा जो रसोई घर है वो साफ करवाया, सारे बर्तन साफ करवाए, सब कुछ साफ सुथरा रख के फिर उस ब्राह्मण ने कहा, ठीक है मैं दोबारा पकाना आरंभ करूंगा। तो फिर से वो ब्राह्मण बैठे पकाने के लिए, अब काफी समय लगा पकाने के लिए, पकाने के बाद में उस समय किसी ने कहा कि अभी तो निमाई को बाहर घर के बाहर पड़ोस में कहीं भेज देना चाहिए, ताकि आके यहाँ पे वो कोई किसी को तकलीफ न दे, बेचारे ब्राह्मण को वो कष्ट न दे। तो जब पड़ोस में गए थे, लेके गए सब लोग निमाई को, तो पड़ोस की महिलाएं उनको ऐसे ही प्रेम में डांटने लगी कि अरे निमाई तुमने क्यों जाकर उस ब्राह्मण के बेचारे को उनका भोग नष्ट किया। और फिर किसी कहीं और गए और वो कहने लगे कि मैंने तुम्हें, उन्हें तो मुझे बुलाया, वो ध्यान में बैठे तो मुझे बुला रहे थे, मैं गया तो मेरा क्या कसूर था उसमें। आखिर में जो बोल रहे थे निमाई वो सही था ना, जो कृष्ण को ही बुला रहे थे कि आइए स्वीकार कीजिए, वो भी बाल रूप में, तो गए वहां निमाई, तो निमाई का जाना सही था क्योंकि बुलाया था, वो गए थे। लेकिन लोक माया के पर्दे की वजह से नवद्वीप के निवासीगण इस बात को जान नहीं पाए। तो और एक महिला कहने लगी, अरे देखो तुम तो ब्राह्मण हो, अब ये ब्राह्मण आए हैं लेकिन न जाने कौन है, कहाँ से आए हैं, कौन से परिवार से आए हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, अभी इनसे इनका पकाया हुआ खाने से तुमने अपना जात तो खो लिया। तो कहने लगे निमाई पंडित, निमाई कहने लगे, वैसे मेरा जात तो गोपालकों का है, गायों की रक्षा करना ये मेरा काम है, और वैसे ब्राह्मणों के हाथ का बनाया हुआ तो हम खाते हैं, तो इससे हमारी जाति कैसे नष्ट हो सकती है। तो इस तरह से ऐसे छोटे बालक के ऐसे जवाब सुनकर सभी लोग बड़े खुश हो जाते थे कि इतना छोटा बालक ऐसे ऐसे जवाब देता है, हर चीज के लिए जवाब होता था निमाई के पास, और ऐसे जवाब के इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसे जवाब इसके पास कहाँ से आ गए, ऐसे बुद्धि कहाँ आ गई इस बालक के। तो इस तरह से धीरे धीरे से एक एक महिला के पास से दूसरे महिला, दूसरे के पास से तीसरा, और जो भी उनको पकड़ता था अपने गोद में वो दिव्य आनंद की अनुभूति करते थे। उधर वो ब्राह्मण पका रहे थे और इधर निमाई को एक घर से दूसरे घर ले जा रहे थे, सभी लोग उसके साथ में खेल रहे थे। और समय बीत गया और निमाई भी तो भगवान ही है, अपने योग माया शक्ति का प्रदर्शन उन्होंने फिर से कराया और किसी के न जानते हुए वहां से निकल पड़े, कोई पहचान नहीं पाए, किसी ने सोचा कि हमारे घर में नहीं, शायद पड़ोस में गए होंगे, पड़ोस में सोचते नहीं शायद उनके पड़ोस में गए हैं। तो इस तरह से सभी लोग सोचते थे कि शायद पड़ोस में गए हैं, लेकिन कहां आए निमाई, सीधे उस रसोई घर में आए जहाँ ब्राह्मण रसोई कर रहे थे। उन्होंने रसोई दूसरी बार करना समाप्त कर दिया था और बिल्कुल स्वच्छ पात्रों में फिर से बाल गोपाल जी के सामने उन्होंने भोग रखा था और फिर से ध्यान में बैठ गए। बाल गोपाल जी को प्रार्थना कर रहे थे कि आप स्वीकार कीजिए, और ठीक उसी समय उनके आंखों के सामने फिर से ये बाल निमाय आए। बिल्कुल वस्त्र नहीं थे, सारी धूल शरीर में लगी हुई थी। आपने फिर से मुट्ठी मार दी और मुंह में रख दिया। देखते देखते ये हिल नहीं पाए, इतना उनको धक्का बैठ गया ब्राह्मण को। अगर चाहते थे तो जल्दी से उठकर रोक सकते थे, लेकिन अरे हाय हाय दूसरी बार इस बालक ने सब भोग नष्ट कर दिया है। और जब ये हाहाकार सुना तो जगन्नाथ मिश्र आए, दूसरे भी लोग वहाँ आए, और इस बार जगन्नाथ मिश्र के क्रोध के तो क्या कहने। उन्होंने छड़ी ली हाथ में और पीछे भागे निमाय के। अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा, ऐसी पिटाई करूंगा कि छाल उखाड़ दूंगा तुम्हारे शरीर से। लोग मुझे शब्द कहते जाने तो भाड़ में जाने तो मेरे सभ्यता, मेरे ज्ञान, मेरा विद्वत्ता, मैं तुम्हें भी सिखा कर ही रहूंगा। इतनी शरारत करते हो। तो बड़े क्रोधित हुए, अपने आप को संभाल नहीं पाए, छड़ी लेकर पीछे भागे उनके। सभी लोग हैरान हो गए, कह रहे जगन्नाथ मिश्र का ऐसा क्रोध, ऐसे क्रोध में न जाने क्या कटेंगे वो बालक को। ब्राह्मण भी उनके पीछे भागे, मिश्रा जी छोड़ दीजिए, आखिर में बालक है। और भी घर के निवासी थे, उन्होंने भी पकड़ लिया मिश्रा जी का हाथ। मिश्रा जी कहने का, छोड़ो मुझे, आज मैं सबक सिखा के रहूंगा इस बालक को, क्या समझता है अपने आप को। तो किसी तरह से मिश्रा जी को उन्होंने शांत करा दिया, और बेचारे मिश्रा जी, जगन्नाथ मिश्रा जी बड़े उदास हुए। अपने मुंह को उठाकर भी आंखों में आंख मिलाकर किसी को देख नहीं पाए, और यूं ही बैठ गए, उदास होकर बैठ गए, शर्मिंदा हुए। और ब्राह्मण आए उनके पास, आप चिंता नहीं कीजिए, देखिए भगवान श्री कृष्ण की इच्छा है वही जो परम है। मुझे लगता है कि भगवान श्री कृष्ण की इच्छा है कि आज मैं अन्न न खाऊं, इसलिए ये सब हो रहा है। ये बालक तो कृपा केवल उनका यंत्र है, इसलिए भगवान के भक्त को पहचानना चाहिए जब भगवान का हाथ होता है किसी कार्य में, भगवान की इच्छा क्या है, इस बच्चे का क्या कसूर है। शरारत करना तो इसका धर्म है, ये तो बालक है, ये तो करेगा, लेकिन आप इस तरह से इसको मारिए मत, आप पीटिए मत। तो दूसरी बार जब ऐसे हुआ तो सभी लोग हैरान थे। तो उस समय एक सुंदर नवयुवक वहां अंदर चले आए, और वो थे विश्वरूप, जगन्नाथ मिश्र और शची माता के पहले पुत्र, जो कि आगे चल के जिन्होंने संन्यास लिया। तो विश्वरूप जैसे ही कमरे में अंदर आए तो उसके शरीर का सौंदर्य और तेज देखकर ब्राह्मण अपने मुंह को खोल के देखते रह गए, और उन्होंने कहा ये किनके पुत्र हैं। तो जब लोगों ने कहा कि ये जगन्नाथ मिश्र के पुत्र हैं, तो फिर उस ब्राह्मण ने विश्वरूप को आलिंगन किया और कहा कि धन्य है वो माता पिता जिनके ये पुत्र हैं। और वो देखते रह गए विश्वरूप को, और उस समय विश्वरूप ने प्रणाम किया उस ब्राह्मण को, और प्रणाम करके फिर उन्होंने बहुत ही मीठे शब्दों में बोलना आरंभ किया, कहा कि हमारा सारा परिवार, हमारा सारा घर धन्य हो गया है, क्योंकि आप जैसे महान भक्त के चरण कमल हमारे घर में पड़े हैं, इसलिए हम कितने भाग्यशाली हैं, कितने आभारी हैं आपके। विरला ही ऐसे महान भक्तों का, साधुओं का संग करने का अवसर प्राप्त होता है, और आप तो जगह जगह घूमते रहते हैं, और हमारे ऊपर, हम जैसे लोगों के ऊपर आपने कृपा की है, वास्तव में हमारा सौभाग्य है। हम कितने शर्मिंदा हैं कि हमारी वजह से ये जो घटनाएं हुई हैं, इनकी वजह से आपको कितना कष्ट हुआ है। तो कृपा करके आप पुनः अभी एक आप पकाइए भोजन, हम आपको सारे सामग्री दे देंगे। तो ब्राह्मण ने कहा नहीं, इससे साफ जाहिर होता है कि भगवान की इच्छा है कि मैं केवल फल खाऊं और सो जाऊं, और वैसे भी रात के 1:30 बज चुके हैं, इतने घंटे बीते, क्योंकि देखिए आखिर में एक बार बनाना कितने घंटे लग जाते हैं, 1-2 घंटे तो लग ही जाते हैं, और फिर उन्होंने इतने सारे व्यंजन बनाए थे तो थोड़ा समय लगा ही होगा, और फिर दूसरा बार भी बनाया, तो कितने घंटे बीत गए थे और रात के 1:30 बजने को आए थे। तो ब्राह्मण ने कहा कि इतनी देर रात हो गई है, अभी फिर से में बनाओ, कितना समय लगेगा। तो भगवान श्री कृष्ण की इच्छा यही है, देखिए घर में भी भंडार पड़ा हुआ धन अनाज का, धान्य का, अगर भगवान की इच्छा न हो तो हम खा नहीं सकेंगे। वास्तव में सच्ची बात है, घर में कितना भी अनाज क्यों न हो, अगर भगवान की इच्छा न हो तो हम उसको खा नहीं पाएंगे। सही बात है, कभी कभी घर में कुछ रहता नहीं है किसी के, तो खा नहीं सकता और फिर भी भगवान आके दे देते हैं। ऐसे कितने भी सारे घटनाएं हैं, लीलाएं हैं भगवान के भक्तों की। और कई बार ऐसे होता है कि घर में सब कुछ होते हुए भी हम कुछ खा नहीं सकते, चाहे डॉक्टर ने कहा है कि ये मत खाओ वो मत खाओ, तबीयत खराब हो सकती है, नहीं खा सकते हैं। तो ब्राह्मण ने कहा कि घर में सब कुछ है ये ठीक है, लेकिन भगवान की इच्छा न हो तो कोई आदमी कुछ खा नहीं सकता। तो मुझे तो लगता है कि भगवान की इच्छा यही है कि मैं उपवास करूं। फिर भी विश्व रूप में उनका पैर पड़ने लगे और कहने लगे कि नहीं नहीं, हमें अच्छा नहीं लगेगा, अगर आप भूखे रह गए तो हमारे ऊपर सारी अशुभ चीजें होंगी, हमारे सारे परिवार के ऊपर, घर के ऊपर, यहाँ तक कि हमारा सारा शहर। तो इस तरह से कृपा करके, ये हम सब सबकी इच्छा है कि ये सामग्री रहे, पुनः आप भोजन को बनाइए और भगवान को भोग चढ़ाइए। तो विश्वरूप के मीठे स्वरों को सुनकर इनकार नहीं कर पाए ब्राह्मण, तो उन्होंने कहा ठीक है। तीसरी बार भोजन बनाना आरंभ किया और इस बार सब लोगों ने कहा कि हम, महिलाओं ने कहा कि हम कमरे के अंदर रहेंगे, निमाय हमारे साथ में रहेगा और आप बाहर से दरवाजे को रस्सी से अच्छी तरह से सख्ती से बांध लो ताकि ये निमाय निकल ना सके, और वैसे भी हम इसके साथ में रहेंगे तो ये कुछ शरारत नहीं कर पाएगा। तो जगन्नाथ मिश्र ने कहा ठीक है। फिर ब्राह्मण फिर से बनाने लगे भोजन और उधर निमाई अंदर सो गए, और सो गए तो बाकी जो महिलाएं हैं वो भी देखने लगे कि कौन समझ सोच सकता है कि इतना मासूम सा लड़का ऐसे शरारत कर सकता है। देखने से लगता है कि इतना मासूम है, कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन इतना उत्पात कर दिया इसने आज के रात में, सारे सबके नींद हराम कर दिया इसने। तो ठीक है, धीरे धीरे भगवान की योग माया शक्ति से सारी महिलाएं वहां सो पड़े। और जैसे आप जानते हैं, जिस तरह से कृष्ण भगवान ने गोकुल में, मथुरा में जब जेल खाने में थे कंस के, तो किस तरह से उनकी माया शक्ति के वजह से सारे जो द्वारपाल थे, वहां चौकीदार लोग थे, सिपाही थे, सब सो गए और खुद ब खुद जो है वो दरवाजे जिसके ऊपर बड़े बड़े ताले वगैरह लगे थे, जंजीर लगे थे, वो सब खुल गए। वसुदेव के चरणों में और हाथों में जो जंजीर थी वो भी खुद ब खुद खुल गई। तो भगवान ने 5000 वर्ष पूर्व ऐसा किया था, तो यहाँ छोटा सा घर का दरवाजा खोलने में कौन सी तकलीफ थी भगवान को, यहाँ जब हथियार धारण किए हुए सिपाहियों को सुला दिया आसानी से, तो ऐसे महिलाओं को घर में सुलाने से उनको क्या तकलीफ थी। तो घर में सबको सुला दिया, दरवाजे खुद ब खुद खुले, निमाई चले आए बाहर, और उस समय तीसरी बार भोजन भोग तैयार था, ब्राह्मण ने रखा था वहां पर सिंहासन के ऊपर, बाल गोपाल के ध्यान में बोल रहे थे कि आप स्वीकार कीजिए। फिर से आए वहां, फिर से आकर निमाई ने हाथ डाल दिया और मुंह में डालने लगा, तब ब्राह्मण की क्या दशा हुई वो तो शायद देखने से ही पता चल सकता है। लेकिन उस समय निमाई ने कहा कि अरे ब्राह्मण चिंतित न हो जाओ, तुम मुझे पहचानते नहीं हो, तुमने बार बार मुझे बुलाया है तो मैं आया हूँ, तो क्यों हैरान हो रहे हो। पहली बार तुमने बुलाया मैं आया, तुम हाय हाय करने लगे, दूसरी बार बुलाया मैं आया फिर भी हाय हाय करने लगे, अभी भी तुम इतनी तीव्रता से मेरी पुकार कर रहे थे, मैं दूर कैसे रहता, मुझे तो आना ही था तुम्हारे पास में, तुमने मुझे ही तो अर्पण करना चाहा था इसलिए मैं आया हूँ, तो क्यों ऐसी दशा हो गई है तुम्हारी। और उस समय निमाई ने एक अद्भुत रूप का प्रदर्शन कराया उस ब्राह्मण को, 8 भुजाओं वाला रूप था, 2 नहीं, 4 नहीं, 6 नहीं, 8। देखिए 8 भुजाओं वाला रूप देख कभी सुना है इसके बारे में आपने, भगवान ने बहुत कम दिखाया है। मुरारी गुप्त को षड्भुज रूप दिखाया, 6 हाथों वाला षड्भुज रूप दिखाया, कई बार देवकी और वसुदेव को चार भुजाओं वाला रूप दिखाया, लेकिन इस ब्राह्मण को आठ भुजाओं वाला रूप दिखाया, और इन आठ भुजाओं में से चार में विष्णु के चिन्ह थे, शंख चक्र गदा पद्म, और दो हाथों में उन्होंने एक हाथ में मक्खन और दूसरे हाथ में मक्खन खा रहे थे, और बाकी के दो हाथ रहे उसे बांसुरी बजा रहे थे, और उनके गले में वैजयंती माला लटक रही थी, पांच प्रकार के रंगों के फूलों से बने हुए जो कि उनके घुटनों तक आ रहे थे। उनके वक्षस्थल में श्रीवत्स था और कौस्तुभ मणि, उनके बालों में सुंदर मोर पंख और नाना प्रकार के फूलों के आभूषण, पीताम्बर पहनी हुई थी, नाना प्रकार के दिव्य रत्न उनके शरीर पर चमक रहे थे, उनके कमल नयन, उनके मोतियों जैसे दांत, और उनके चेहरे पर वे तेज, इन सब को देखकर जो ब्राह्मण थे वो तो गिर पड़े बेहोश अवस्था में। फिर भगवान ने उनको उठाया, स्पर्श कराया, और जैसे ही स्पर्श कराया फिर से होश से बाहर आए, बेहोश की अवस्था, होश आ गया उनको, लेकिन फिर भी देखा फिर से बेहोश होते रहे। इस तरह से बार बार बेहोश होकर गिर पड़े, फिर से होश में आया, फिर से बेहोश हुए, ऐसे काफी समय तक चलता रहा, और होश आने के बाद में भी ब्राह्मण स्तब्द हो गए, कुछ बोल नहीं पाए, समझ नहीं पाए कि ये क्या है, मैं क्या देख रहा हूँ, ये क्या हो क्या रहा है मेरे सामने। तो इस तरह से फिर भगवान ने जब देखा कि अब स्थिर हो गए थोड़ा बहुत, तो उन्होंने बताया कि देखो हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारा आराध्य देव हूँ, तुम अभी समझ गए हो, ये मेरी एक बहुत अद्भुत लीला है, ये मेरा छुपा हुआ अवतार है, इसमें मैं आता हूँ और कोई मुझे पहचान नहीं सकते कि मैं कौन हूँ, मुझे केवल साधारण मनुष्य समझते हैं, लेकिन जान लो कि मैं परम भगवान हूँ और तुम मेरे नित्य भक्त हो। 4,500 साल पहले जब मैं प्रकट हुआ था गोकुल में, तो तुम भी मेरे पिता नंद महाराज के घर में आए थे, और जिस तरह से इस जीवन में भी तुम भ्रमण करते हुए यहाँ मेरे पिता के घर में आए हो, ठीक उसी तरह से उस समय भी तुम एक ब्राह्मण थे और भ्रमण करते रहते थे, और तुम गोकुल में हमारे घर में आए थे, और जो लीला आज हुई है हमारे घर में यहाँ पर, वही लीला उस समय भी हुई थी। जहाँ भी मैं अवतार लेता हूँ तुम इसी ऐसा ही रूप धारण करके मेरे साथ में आते हो, मुझे याद है लेकिन तुम्हें याद नहीं है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि भगवान की जो अलग अलग लीलाएं होती हैं, उनके साथ में उनके पार्षद भी आते हैं, और उनके पार्षद हो सकता है कि इन लीलाओं को भूल जाते हैं, लेकिन भगवान नहीं भूल जाते। बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तवचार्जुना भविष्यानी च भूतानी माम तो वेद न कश्चन। वो कहते हैं कि हमने अनेक, कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बताया, अनेक जन्म हमने बिताए हैं, लेकिन मैं सारे जन्मों को जानता हूँ, मुझे स्मरण है इनका, लेकिन तुम भूल चुके हो अर्जुन। तो उसी तरह से ये ब्राह्मण ये भगवान के नित्य पार्षद थे, जहाँ भी भगवान अवतार लेते हैं तो यही लीला ये ब्राह्मण हर बार करते हैं, हर बार आके ये भोग चढ़ाते हैं, बार बार भगवान उसको खा लेते हैं, भोग नष्ट कर देते हैं, हैरान होकर ब्राह्मण हाय हाय करते हैं, और फिर अंततः भगवान उनको अपना असली रूप दिखा देते हैं। हर बार हर लीला में यही होता है। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने उनको समझाया कि देखो इस बार किसी को ये बताना नहीं, अगर किसी को बताओगे तो मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। मेरा काम इस अवतार में ये है कि मैं हरि नाम का संकीर्तन फैलाऊंगा, लोगों को कृष्ण भक्त बनाऊंगा, सब जगह कृष्ण प्रेम को फैलाऊंगा, और जगह जगह से जो भी है सबको मेरे ही प्रेम में मैं इसके सागर में डुबो लूंगा, ये मेरा काम है, इसलिए मैंने इस अवतार को लिया है। लेकिन इस बात को किसी को नहीं बताना, खबरदार किसी को बताया तो देखो। तो इस तरह से ब्राह्मण शांत हुए थोड़ा बहुत सुना, और फिर निमाय अपने कमरे में फिर से चले गए। सब जैसे के जैसे दरवाजा बंद था वैसे फिर से दरवाजा बंद हो गया, बाकी लोग जैसे सोए थे वैसे सोए रहे। और उधर जब निमाय चले गए वहां से, तो ब्राह्मण कूदने लगे और उस अन्न को लेकर अपने शरीर पे उसका लेप लगाने लगे और कूदने लगे, हुंकार करने लगे जोर जोर से, क्योंकि इतने भाव वेश में आ गए थे कि अपने आप को संभाल नहीं पाए, रोक नहीं पाए, जोर जोर से हल्ला करने लगे उधर। तो ऐसे हुंकार से जो है सारे घर के लोग जाग गए, तो फिर सफल गए। ब्राह्मण सोचा कि अभी मुझे दिखाना नहीं चाहिए, और फिर से जल्दी जल्दी से अपने शरीर से सब शरीर को साफ कर दिया और फिर वो भोजन लेना प्रसाद लेना आरंभ कर लिया। तो सारे घर के निवासी आए वहां, जब देखने लगे कि ब्राह्मण आखिर वे खा रहे हैं, तो सभी लोग संतुष्ट हुए, सभी लोग खुश हुए और वापस अपने अपने जगह चले गए। तो ब्राह्मण सोच रहे थे कि मुझे बताना चाहिए कम से कम कि ये जानते नहीं है कि इनके घर में कौन है। उनका हृदय चीख चीख के पुकार रहा था कि अरे तुम लोग जानते नहीं हो कि तुम्हारा बच्चा ये कौन है, जिसको तुम साधारण बच्चा समझते हो ये कौन है तुम नहीं जानते, मैं जानता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ। हृदय चीख चीख के बोल रहा था, लेकिन उनको याद आया कि भगवान ने क्या चेतावनी दी है। तो हालांकि हृदय चीख चीख के बोल रहा था, मुंह से कुछ नहीं बोल पाए, मुंह चुप रहा। और इस तरह से कई दिनों तक वो ब्राह्मण वहीं पर रहे उसी गांव में, और भ्रमण करते करते कुछ बार बार हर रोज कई बार आके निमाय का दर्शन करके अपने हृदय को तृप्त करके फिर चले जाते थे। इस तरह से ये अद्भुत लीलाएं भगवान ने किए अपने भक्तों के साथ में। एक बार ऐसे हुआ कि जब निमाय बाहर अपने आंगन में खेल रहे थे, तो दो चोर वहां पर आए। निमाय के दिव्य शरीर के ऊपर अलग अलग प्रकार के गहने थे, तो इन गहनों को देखकर जो कि सोने के बने हुए थे, इन चोरों ने सोचा कि चलो हमें इस बच्चे को उठा ले जाना चाहिए, और उठाकर हम इसको ऐसी जगह ले जाएंगे, फिर हम गहने ले लेंगे, बच्चे को छोड़ेंगे, मारेंगे, जो भी करेंगे, फिर हम धनी हो जाएंगे। तो चुपके से उन्होंने बच्चे को उठा लिया, जबकि कोई देख नहीं रहा था, इधर उधर देखा कोई देख तो नहीं रहा, चुपके से उठा लिया और अपने कंधों पर बिठाकर बच्चे को ले गए, निमाय को ले गए। और बीच बीच में निमाय के मनोरंजन के लिए कुछ संदेश हाथ में मिठाई देते रहे, कुछ इधर उधर की बातें बोलते रहे कि हम तुम्हें घर में ले जाएंगे, यहाँ ले जाएंगे, वहां ले जाएंगे, ताकि बच्चा रोए नहीं और किसी को लगे नहीं कि उसका अपहरण हो रहा है। तो बहुत ही भीड़ वाले बाजार से गुजरे, लेकिन बाजार में आप जानते हैं इतने हजारों लोग होते हैं, कोई किसी को पहचानता नहीं, सब अजनबी होते हैं, सब एक दूसरे को देखते हुए भी जानते नहीं कि ये कौन है, किसका बच्चा कौन है। तो सभी ने देखा कि ये बालक को लेकर जा रहे हैं, लेकिन सोचा कि ये तो उन्हीं का बच्चा होगा, यही देखभाल करने वाले होंगे। तो इस तरह से वो गुजर गए वहां से बाजार से, और अपने मन ही मन स्वप्न देख रहे थे, ये जो भी शरीर के ऊपर सोना है इसको बेचेंगे, हमें इतना धन मिलेगा, फिर इस धन से हम ऐसा खाएंगे, ऐसा पियेंगे, ये ऐश करेंगे, वैसा मजा करेंगे, और अपने स्वप्न देखते 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 चल रहे थे। और उधर निमाय मन ही मन हंस रहे हैं, देखो हम अभी कैसे मूर्ख बनाएंगे इनका। तो उस समय भगवान ने अपनी योग माया शक्ति का स्विच चालू कर दिया, और जैसे ही चालू कर दिया तो बेचारे जो अपहरण करता है उनको समझ में नहीं आया कि वो किस दिशा में जा रहे थे। उन्होंने सोचा कि हम तो अपने घर की ओर ही जा रहे हैं, चलते रहे चलते रहे चलते रहे, लेकिन घूम घूम कर वो जगन्नाथ मिश्रा के घर की ओर ही आए। उनको पता नहीं चला कि मर्तमन कहाँ जा रहे हैं। उधर जगन्नाथ मिश्रा जी के घर में कोलाहल मच गया, उत्पात मच गया, हाहाकार मच गया, सभी लोग कहाँ निमाय, कहाँ है निमाय, कहाँ है निमाय, इधर उधर सोच रहे हैं, कोई लोग यहाँ गए, कोई लोग वहां गए, ऊपर नीचे सारी जगह छान मारे, लेकिन निमाय कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। जगन्नाथ मिश्रा और सारे लोग अपने कपाल को हाथ में लेके वो बैठ रहे हैं कि हाय हाय हमारा बच्चा कहाँ गया, क्या होगा। और उस समय ये दो आदमी अपहरणकर्ता निमाय को लेकर आए और निमाय को नीचे उतारा, सोचा कि अपना ही घर है, सोचा कि हम पहुंच गए अपने घर, और सामने ऊपर देखा तो अरे ये अपना घर तो नहीं लग रहा, हम आए कैसे, हम तो अपने घर के रास्ते में चले थे सड़क में, और उल्टी दिशा में कैसे आकर पहुंच गए। लेकिन उधर उन्होंने देखा कि वहां लोग हाहाकार बचा रहे हैं तो सोचा कि हम पकड़े जा सकते हैं, तो जल्दी से बच्चे को नीचे उतारा, रख दिया वहां पे और वहां से निकल पड़े, भाग गए वहां से। और आपस में उन्होंने एक दूसरे को आलिंगन किया और कहा कि चंडी देवी ने, दुर्गा देवी ने हमको बचाया आज। वास्तव में नहीं तो अगर पकड़े जाते तो इतने सारे लोग हैं हमारी पिटाई करते, धुलाई कर देते हमारी। आज तो चंडी देवी की कृपा से ही हम बच गए। लेकिन ये दो लोग समझ नहीं पाए कि वैसे हम अपने घर की ओर चले तो यहाँ वापस कैसे चले आए, पूरा गोर होकर आए कैसे वापस। तो भगवान की योग माया शक्ति ने काम किया। तो उधर निमाई चुपचाप अंदर चले गए और घोषणा की कि मैं आ गया। और सब लोग, अरे ये कहां से आ गए। सभी लोग खुश हो गए, शांत हो गए और फिर पूछने लगे, निमाई कहां गए थे तुम और आए कैसे वापस। तो निमाई ने कहा कि मैं गंगा के तट पर गया था और वहां मैं रास्ता भूल गया, ये तो सज्जन थे उन्होंने मुझे उठा लिया, उन्होंने कंधों पर लिया और यहाँ पे छोड़ के चले गए। तो कई और लोगों ने देखा था कि दो लोग आए थे निमाई को कंधे पर रख के और उन्होंने रख के वो चले गए हैं। अभी कोई बच्चा अगर खो जाता है और आप उसको ढूंढ निकालते हैं और फिर आपको पता चलता है कि ये बच्चा किसका है और उस बच्चे को आप घर पे ले जाते हैं, तो ये स्वाभाविक है कि आप उसके माता पिता या परिवार के सदस्य के लोगों से मिलेंगे। लेकिन ये दो लोगों ने ऐसे नहीं किया, केवल बच्चे को रखे भाग निकले वहां से। तो सभी लोग सोच रहे थे कि आए क्यों नहीं मिलने हमें, हम उनको पुरस्कार देते, धन्यवाद देते। तो इस तरह से सारे लोग फिर से वहां संतुष्ट हो गए। उन्होंने जाना नहीं कि क्या हुआ है, कैसे ये सब लीला हो गई। और उन्होंने सोचा ये जी देखो भगवान की कृपा है, भगवान के अदृश्य हाथ से वो सबकी रक्षा करते हैं। और उधर जो दो चोर थे वास्तव में उनको भी समझ में नहीं आया कि क्या हुआ था, वो आ रहे हैं कि जा रहे हैं उनको समझ में नहीं आया। लेकिन वृंदावन दास ठाकुर बताते हैं ये दो चोर वास्तव में कितने भाग्यशाली थे, क्योंकि उन्होंने निमाई को अपने कंधों पर बिठाकर सेवा की थी, इधर उधर भ्रमण कराया ना। बच्चे लोग इधर उधर भ्रमण करना चाहते हैं ना, इधर घूमना चाहते हैं उधर घूमना चाहते हैं, तो इन्होंने बच्चे को घुमाया अपने कंधे पर बिठाकर सेवा की। तो इस सेवा की वजह से उनका उद्धार हो गया, उनका बहुत लाभ हो गया। इतना लाभ हुआ जितना कि वो दो चोर सोच भी नहीं पाए, समझ भी नहीं पाए। इस तरह से निमाय पंडित अपनी लीला, निमाय बाल निमाय अपनी लीला करते रहे। एक बार ऐसे हुआ, एकादशी का दिन था और आप जानते हैं कि एकादशी के दिन वैष्णव अन्न नहीं खाते हैं। तो सची माता ने एक बार उनको पूछा, अरे बेटा निमाय मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकते हूँ। तो निमाय ने कहा एकादशी में, एकादशी के दिवस अन्न खाना बंद कर दो। तो माँ ने कहा अभी से बंद कर दे तो बस खत्म। तो उस समय से सची माता ने एकादशी का व्रत अच्छी तरह से पालन करना शुरू किया। तो देखिए एकादशी के दिन अन्न न खाना ये कितना एक महत्वपूर्ण आदेश है। जब सची माता ने भगवान से पूछा कि मैं क्या कर सकती हूँ, भगवान कुछ भी कह सकते थे, कितने सारी चीजें मांग सकते थे सची देवी से, लेकिन उन्होंने कहा एकादशी में अन्न नहीं खाना, क्योंकि एकादशी के दिवस पे अन्न में पाप निवास करता है। इसलिए जो एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करता है वो पाप खाता है, इसे तुम्हें नहीं करना चाहिए। तो एक दिन एकादशी के दिवस निमाय बहुत रोने लगे, और चाहे जो भी कुछ लोग करें निमाय का रोना बंद ही ना हो। तो सोच ऐसे क्या किया जाए। तो सब लोग हैरान होकर निमाय से पूछने लगे, अरे निमाय इतना रोते हो, हमने सब कुछ प्रयास किया है तुम्हारा रोना बंद करने के लिए, लेकिन रोना बंद नहीं हो रहा है, हम क्या करें तुम्हें रोना बंद करने के लिए, क्या चाहिए तुम्हें। तो निमाय ने कहा कि यहाँ से थोड़े दूर भगवान विष्णु के शुद्ध भक्त हैं हिरण्य पंडित और जगदीश पंडित, दो भाई हैं, उनके घर में एकादशी की तिथि पर विष्णु के लिए बहुत अच्छा भोग रहता है, अन्न का भोग। आखिर ये एकादशी का व्रत जो है ये केवल हमारे लिए है, भगवान के लिए तो नहीं है। भगवान के लिए कोई बंधन नहीं है कि एकादशी के दिवस पे वो अन्न नहीं खा सकते। इसलिए भगवान के विग्रह को भी हम एकादशी के दिन पूरा पूरा भोग चढ़ाते हैं, जैसे कि हर रोज चढ़ाते हैं, कोई फर्क नहीं। एकादशी के दिवस केवल भक्त लोग अन्न नहीं खाते हैं, लेकिन भगवान तो खाते हैं रोज। तो उन्होंने कहा कि एकादशी के दिवस खास करके विष्णु के लिए महाप्रसाद अर्पण किया जाता है, तो मुझे वो महाप्रसाद का सेवन करना है, तब मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो जगन्नाथ मिश्रा ने सोचा कि इसे कैसे मालूम, फिर भी ठीक है, काफी दूर था, कई मील दूर था वहां से, लेकिन जगन्नाथ मिश्रा जी वहां गए और उन्होंने बताया हिरण्य पंडित और जगदीश पंडित को कि निमाय ऐसे रो रहा है, बोल रहा है ये बीमारी है और आपके घर से जो विष्णु प्रसाद है जो आपने आज भोग रहा है एकादशी के दिन वही खा सकता है। तो उन्होंने जब सुना तो उनको भी आश्चर्यचकित रह गए कि अरे इस बालक को ही कैसे पता चला, इतने दूर है वो तो कैसे पता चले कि हमने आज विष्णु को भोग चढ़ाया इतना अन्न बनाकर। अद्भुत बात, अवश्य इसके अंदर कोई अद्भुत शक्ति होगी जिसकी वजह से ये जान सकता है। तो उन्होंने फिर वो महाप्रसाद दिया और जगन्नाथ मिश्रा जी इस महाप्रसाद को लेकर आए और फिर उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को खिलाया और खिलाकर जैसे ही खिलाया तो वो बिल्कुल शांत हो गए। इस तरह से बहुत अद्भुत बात है, ऐसी अद्भुत लीलाएं चैतन्य महाप्रभु करते रहे। एक बार चैतन्य महाजमाई ने अपने कोमल हस्तों से सखी माता को ऐसे ही मारा, जैसे बालक कई बार अपने माँ को मारते हैं, छोटे छोटे शिशु होते हैं कभी अपने नन्हे हाथों से माँ को मारते हैं, तो एक बार निमाई ने भी ऐसे ही अपने नन्हे हाथों से अपने माँ को मारा। तो सखी माता ने नाटक किया कि वो बेहोश हो गई, हालांकि छोटे बच्चे के हाथ लगने से कोई बेहोश नहीं होता। ऐसे ही निमाय को समझाने के लिए कि ऐसे नहीं करना चाहिए, निमाय को चिढ़ाने के लिए वो बेहोश होने का नकल करने लगी, नाटक करने लगी। और उधर निमाय ने सोचा कि ये वाकई बेहोश हो गई, तो रोने लगे और रोने लगे तो जो महिलाएं थी पड़ोस की वो सब वहां थी तो वो भी समझ गए कि क्या हुआ है, तो वो भी इस मजाक में शामिल हो गए और उन्होंने कहा निमाय से कि निमाय अगर फिर से अपने माँ को होश में देखना चाहते हो तो तुम्हें बाहर से नारियल लाना चाहिए। अब नारियल का पेड़ नहीं वहां, कहां लाए बेचारा निमाय बालक, नारियल कहां से लाए। तो जल्दी से निमाय बाहर गए और एक क्षण में वापस आए तो नारियल लेके आए। तो बाकी लोग बिल्कुल चकाचौंध रहे, आश्चर्यचकित रहे कि निमाय ने नारियल कहां से लाया, यहाँ कोई नारियल का वृक्ष नहीं, कोई नारियल देखने वाला आदमी नहीं, कैसे ले आए। तो इस तरह से अपने सर पर जो नारियल लेके निमाय चले आए और सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। निमाय जैसे थोड़े बड़े हुए चलने लगे तो गंगा जी के तट पे जाते थे, वहां पर बहुत सारे लोग आते थे अपना पूजा पाठ करने, स्नान करने। तो वहां बहुत 10-12 साल की नव युवतियां भी आती थी और वो अपने पूजा की सामग्री ले आती थी और शिव जी की पूजा करती थी गंगा जी के तट पर। क्योंकि ये भारत में प्रथा है कि जो कन्याएं होती हैं नव युवतियां वो शिव जी की पूजा करती हैं अच्छा वर प्राप्त करने के लिए, क्योंकि शिव जी बहुत आदर्श वर हैं, शांत हैं, शक्तिशाली भी हैं और परम वैष्णव हैं। तो ये प्रथा है, ये कन्याएं भी जाके शिव जी की पूजा करती थी। तो निमाय जाकर वहां उनसे कहते थे कि अरे तुम इनकी सब पूजा क्यों करते हो, ये दुर्गा जी जो है चंडी है काली है, यहाँ तक कि महेश भी, ये सब मेरे दास हैं, मेरी सेवा करने के लिए सब तत्पर है ये। वैसे जो भी तुम अर्पण कर रहे हो इनको मुझे अर्पण करो। तो वो चंदन लेते और अपने शरीर पर लेप लगा लेते और फिर जो भी माला उन्होंने शिव जी के लिए वगैरह लाए थे वो खुद पहन लेते और जो भी शिव जी को भोग चढ़ाने के लिए मिठाई फल वगैरह लाते थे वो खुद खा लेते थे बैठकर। फिर वो छोटी लड़कियां जो है हैरान हो जाती कि अरे निमाय ग्राम संबंध में तो तुम हमारे छोटे भाई भाई जैसे हो और तुम ऐसे हरकत करते हो, उत्पात कर देते हो, तो ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तो फिर निमाय बोलते मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हारे हर एक तुमको हर एक अच्छा अच्छा एक वर मिलेगा और कैसा होगा वो वर, नवयुवक होगा, सुंदर होगा, बुद्धिमान होगा, विद्वान होगा, धनी होगा, सारे अच्छे गुणों से संपन्न होगा और तुम्हारे 7 पुत्र होंगे हर एक के, और हर एक पुत्र जो है वो भी बड़ा विद्वान और सुंदर निकलेगा और लंबे उम्र तक जिएगा पुत्र। तो फिर वो सुनते अंदर से अच्छा लगता कि कुछ ऐसा वरदान दे तो ऐसा नहीं, कौन ऐसी लड़की है जिसको अच्छा नहीं लगेगा, अंदर अंदर से अच्छा लगता उनको, लेकिन बाहर से क्रोध का नकल करते और डांटते कि ठीक है चलो जाओ जाओ अभी हमें परेशान मत करो। और अगर कोई ऐसी लड़की थी जो जल्दी से भाग जाती थी और नहीं देती थी, तो जैसे वो भागती थी उनको पीछे से बुलाते थे, देखो अगर मुझे ये सब अर्पण नहीं करोगे तो मैं तुम्हें श्राप दूंगा, याद रखना, और श्राप होगा कि तुम्हें एक बूढ़ा आदमी वर के रूप में मिलेगा जो कि बहुत कुरूप है, और उसकी 4 और पत्नियां होंगी तुम्हारे अलावा। तो ये सुनकर अचानक रुक जाती थी वहां पर, घबरा जाती थी, आखिर ये ब्राह्मण का लड़का है कुछ बोले, हो सकता है उसको कुछ अच्छा ज्ञान है, कुछ और चीजें मालूम है जो हमको नहीं मालूम, हो सकता है कुछ सिद्धि वगैरह कुछ हो, हो सकता है कि देवी देवताओं की शक्ति कोई इसमें हो, कहीं ऐसा तो न हो कि ये जो बोल रहा है वो सही आ जाए। घबरा जाते थे, जल्दी आकर वापस दे, ले लो भाई ले लो, उसको फिर वापस दे देते थे। इस तरह से फिर वो आके बाद में शिकायत करते थे सची माता से, और सची माता से कहते थे कि ये आके हमें ऐसे परेशान करता है, ऐसे ऐसे बोलता है, हमारी जो पूजा पाठ उसको बिल्कुल नष्ट कर देता है ये। तो फिर सची माता उन लड़कियों को आलिंगन करती, उनको शांत करती, मैं उसको बहुत डांटूंगी, आज इतना डांटूंगी कि देखो कल से ऐसा नहीं करेगा। फिर वो लड़कियां हंसती हंसती चली जाती थी और सची माता फिर से उनको डांटती। तो इस तरह से निमाय पंडित निमाय जी लीला करते रहे। तो ऐसे इस समय सची माता अपने घर में अद्भुत दृश्य देखने लगी, सपने में भी और प्रत्यक्ष भी। वो देखने लगे कि सब जगह अद्भुत बहुत ही सुंदर सुंदर देवी देवतागण उपस्थित है घर में, और पायल की खनखन नूपुर की खनखन की आवाज आ रही है। कहां से आ रही है, न जगन्नाथ मिश्र को और न तो सची देवी को समझ में आया कि ये क्या हो रहा है। एक बार सची माता निमाय के साथ में लेकर लेटी थी तो उन्होंने सारे घर को भरा हुआ देखा, सब ऊपर आसमान में नीचे घर में सब जगह देवी देवता है, अपने अपने सुंदर आभूषणों से सुंदर शरीर उनका था सामने। और उन्होंने कहा निमाय से कि निमाय जाके तुम्हारे पिताजी को बुला कर ले आओ। तो निमाय जैसे जल्दी जल्दी से अपने माँ का आदेश पालन करने के लिए गए तो खन 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 नूपुर की आवाज सुनाई दी। तो जगन्नाथ मिश्र जैसे आए तो उन्होंने देखा कि नूपुर की खन खन कहाँ से आ रही है, हमारे बच्चे के चरणों में तो कोई नूपुर नहीं लगाया हमने। और एक बार जगन्नाथ मिश्र ने कहा कि अरे निमाय ये किताब तो मेरे लिए लेकर आना। तो जब वो लेकर आए तो फिर भी खन खन की आवाज, तो दोनों सोचने लगे कि ये क्या है, कहां से नूपुर की खन खन आ रही है। तो उन्होंने सोचा कि एक ही बात हो सकती है कि हमारे बाल गोपाल जो है वो चल रहे हैं, मूर्ति है वही चलते फिरते हैं, इसलिए उनके पैरों में जो नूपुर है उनका खन खन होकर आवाज आ रही है। तो उन्होंने सची माता से कहा कि देखो अभी आज तुम्हें बढ़िया खीर बनाओ और हम कल सुबह सुबह बाल गोपाल को भोग चढ़ाएंगे, क्योंकि हमारे घर में ऐसे सुंदर लीला कर रहे हैं, घर में हमारे चलते फिरते हैं वो, और कल मैं उनको पंचगव्य से उनका अभिषेक कराऊंगा। तो इस तरह से जगन्नाथ मिश्र और सची देवी अपने पुत्र के प्रेम में ऐसे बिल्कुल अपने दिन बिताते रहे। जब नामकरण हुआ था उस समय जब निमाय के सामने बालक के सामने सारी चीजें रखी थी, सोना चांदी धन अनाज गीता भागवत इत्यादि, और फिर जगन्नाथ मिश्र ने निमाय से कहा था कि तुम क्या चाहते हो, तो निमाय ने सीधा जाकर गीता भागवत को पकड़ा, आलिंगन किया और सभी लोग खुश हुए बिल्कुल। तो इसी तरह से लोगों ने भविष्यवाणी की थी कि वास्तव में ये बच्चा जो है ये आगे चल के बहुत विद्वान होगा और सारे शास्त्रों में निपुण हो जाएगा और सबको सिखाएगा, ये बहुत विद्वान बन जाएगा। तो उस समय जब पौगंड की अवस्था आने ही वाली थी, पौगंड मतलब 5 साल की उम्र हो रही थी, तो उस समय एक अनुष्ठान मनाया गया जिसको हाथे खड़ी कहते हैं। हाथे खड़ी मतलब ये विद्यारंभ का अनुष्ठान है, जब बच्चे को पहले अक्षर पहली बार अक्षर सिखाए जाते हैं, ये विद्या दी जाती है, तो उसको बंगाल में हाथे खड़ी कहते हैं। हाथे खड़ी मतलब हाथों में खड़ी दी जाती है चौक, जिससे उसको लिखना होता है। 12 तरह के अक्षर लिखा जाता है, लिखो। जो बड़े उसके साथ में होते हैं वो ऐसे लिखते हैं, तो सिखाते हैं लिखने के लिए, फिर उनका हाथ पकड़, उंगली पकड़ के वो लिखाते हैं। तो इस अनुष्ठान को हाथे खड़ी कहते हैं। तो इस तरह से निमाई की हाथे खड़ी की अनुष्ठान, विद्यारंभ की अनुष्ठान हुई, बहुत सुंदर ढंग से सबने मनाया। निमाई ने पहली बार जब देखा सीकर, एक बार उनको अक्षर अपने हाथों से कराया तो फिर वो याद रखे, दोबारा सिखाने की आवश्यकता नहीं थी। आप सबने जो माता पिता हैं सोच रहे होंगे, काश हमारे बच्चे ऐसे होते, उनको 100 बार बोलना पड़ता है फिर भी नहीं करते हैं, फिर भी शरारत करते हैं। लेकिन निमाय तो स्वयं भगवान है, तो उनको तो कोई तकलीफ नहीं होती। वही तो सारे ध्वनि और स्वर के उगम स्थान तो वही है, तो उनको क्या तकलीफ थी अक्षर वगैरह सीखने में। तो इस तरह से निमाय ने सारे अक्षर सीख लिए, हाथे खड़ी का जो अनुष्ठान है वो हो गया। लेकिन इस बीच जगन्नाथ मिश्र जो है वो अपने बच्चे को बच्चा ही समझते थे, कभी ये नहीं मानते थे कि ये भगवान है। जिस तरह से नंद महाराज और माता यशोदा अपने बच्चे को बच्चा ही समझते थे, ये नहीं जानते थे कि ये भगवान है। तो एक बार जब जगन्नाथ मिश्र ने निमाय को डांटा था और बताया था, धर्म उपदेश दिया था कि तुम्हें क्या करना चाहिए, नीति के बारे में क्या उचित है क्या उचित नहीं है, तो उस रात जगन्नाथ मिश्र को एक स्वप्न आया और इस स्वप्न में एक ब्राह्मण आए और ब्राह्मण कहने लगे कि अरे जगन्नाथ मिश्र, तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बच्चा कौन है और तुम उसको उपदेश देते हो, ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है। तो जगन्नाथ मिश्र ने कहा कि हो सकता है कि मेरा बच्चा बहुत बड़ा योगी है, बहुत बड़ा विद्वान है, जो कुछ भी है, लेकिन मेरे लिए तो मेरा बच्चा ही है, और पिता का धर्म होता है कि वो बच्चे को उपदेश करे, बच्चे को शिक्षा दे, क्या नैतिक है अनैतिक है ये सब समझाए, तो मैं मेरा कर्तव्य कर रहा हूँ। तो ब्राह्मण ने फिर से क्रोध में कहा कि अरे तुम्हारे विद्या देने का क्या फल होगा, व्यर्थ है, ये तो पूरा आत्म साक्षात्कार है, इसको तो सब कुछ मालूम है, इसको विद्या प्रदान करने से क्या लाभ होगा आपको। तो जगन्नाथ मिश्र स्वप्न में ही जवाब देने लगे उस ब्राह्मण से कि चाहे वो साक्षात नारायण भी क्यों न हो, मैं पिता हूँ और पिता का कर्तव्य होता है बच्चे को उपदेश करना, और मैं मेरा काम कर रहा हूँ, ये मेरा मुझे करना चाहिए, नहीं करूँगा तो आगे चल के गलती करेगा, उसका ही नुकसान होगा। तो इस तरह से जगन्नाथ मिश्रा के हृदय में और सची माता के हृदय में वात्सल्य की भावना इतनी तीव्र थी कि कोई भी कुछ भी उन्हें बताता उस बालक के बारे में, वो यही सोचते कि मेरा बच्चा ही है, जिस तरह से यशोदा माता और नंद महाराज का था वृंदावन में। वास्तव में ये वात्सल्य भावना को बनाए रखने के लिए ये श्रद्धा आवश्यक है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों की आंखों के सामने योग माया का पर्दा डाल देते हैं, जिससे कि इस वात्सल्य प्रेम का माधुर्य, इसका मिठास बनाए रखने के लिए उन्हें पता न चले कि उनका पुत्र वास्तव में स्वयं भगवान है। इस तरह से पहले 5 साल की लीलाएं निमाय ने सुंदर ढंग से की, इतने अनंत लीलाएं की भगवान ने। वृंदावन दास ठाकुर भी बताते हैं, मैंने तो केवल संक्षेप में लीलाओं का वर्णन किया है, और तो बहुत सारी लीलाएं हैं, इतनी लीलाएं हैं कि अनंत शेष, स्वयं अपने हजारों हजारों मुखारविंद से अगर इन लीलाओं का वर्णन करता रहे, अनादि काल से भी करता रहे, अनंत काल तक भी करे, फिर भी इन लीलाओं को वो समाप्त नहीं कर पाएंगे। तो जब अनंत शेष इनका पूरा वर्णन नहीं कर पाएंगे तो हम कैसे कर पाएंगे। दोनों वृंदावन दास ठाकुर और कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस बात को बताते हैं। और इस तरह से कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने कहा कि आदि लीला की जो लीलाएं हैं वो खास करके मुरारी गुप्ता ने बताई हैं। उन्होंने अपने नोट्स बनाए थे, सूत्र लिखे थे उन्होंने अपने डायरी में, और जो आदि लीला, मध्य लीला और अंत लीला के जो लीलाएं हैं उनको अपने डायरी में नोट किया था स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने इन दोनों टीकाओं को या इन दोनों सूत्रों को लेकर फिर चैतन्य चरितामृत लिखी थी। तो जो भी ज्ञान चैतन्य महाप्रभु की लीला के बारे में उपलब्ध है वो वास्तव में स्वरूप दामोदर गोस्वामी और मुरारी गुप्ता के सूत्रों से पाया जाता है। तो इसीलिए चैतन्य चरितामृत में भी और चैतन्य भागवत में भी इन दोनों स्थानों से वृंदावन दास ठाकुर और कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने ज्ञान प्राप्त किया है। आज की लीला ज्यादा विस्तार में चैतन्य भागवत में आता है, इसलिए आज जो हमने लीलाओं का वर्णन किया दोनों चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवत दोनों में जो वर्णन है दोनों को मिलाकर आज हमने किया है। तो ये सुंदर सुंदर लीलाएं हुई, भगवान चैतन्य महाप्रभु निमाय के रूप में 5 साल की उम्र तक पहुंचे और पौगंड अवस्था में पहुंचे, और पौगंड अवस्था में उन्होंने क्या लीलाएं किए वो आज दोपहर को और फिर आगे हम इसका श्रवण कीर्तन करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई टीका टिप्पणी प्रश्न?
प्रभु जी कभी कभी देखा जाता है कि कुछ ड्यूटीज के जो बच्चे होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली थोड़ा उनमें स्पेशल क्वालिटीज रहती हैं, क्या ये सम स्पेशल और डायरेक्ट मर्सी है? और कभी देखा जाता है कि कुछ फिजिकल डिफॉर्मिटीज रहती हैं या कोई प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो वो क्या करें? ड्यूटीज के बच्चों में ये पाया जाता है तो
ये तो अभक्तों के परिवारों में भी पाया जाता है। अभक्तों के परिवार में भी हम देखते हैं कोई बच्चा बहुत ज्यादा अकलमंद है, कोई नहीं, कोई बहुत जिसका स्वास्थ्य अच्छा है किसी का नहीं। तो जैसे जैसे हम कर्म करते हैं वैसे वैसे शरीर मिलता है हमको, उसी तरह से अलग अलग तरह से भक्त हो या अभक्त हो अपने अपने कर्म के हिसाब से बच्चों को जन्म लेना पड़ता है इस संसार में। तो इसमें कोई खास कृपा की बात नहीं है, कृपा की बात इसमें है कि अगर कोई बच्चा भक्ति की ओर ज्यादा आकर्षण दिखाए बचपन से ही तो वो भगवान की विशेष कृपा हम समझ सकते हैं। तो ये साधारण चीज नहीं है कि बचपन से ही बाल्यावस्था से ही कोई रुचि प्रदर्शित कराए भगवान की सेवा में, तो ये वास्तव में बड़ा सौभाग्य है। और बाकी जो भी चीज है मानसिक बुद्धि के स्तर पे या शरीर के स्तर पे इसका तो संसार से संबंध है, तो इससे भगवान की कृपा होना या न होना इसकी ज्यादा कोई बात नहीं है। जैसे कर्म है उसके हिसाब से शरीर मिल जाता है।
मेरे किसी को गुरु जी और उनके पेशे अच्छा बालक जन्म आया, तो बाप के अच्छा काम से अच्छा बालक होता है सर, तो बुरे का हाँ अच्छा बालक है सर।
बुरे आदमी का कभी अच्छा बच्चा होता है, अच्छे आदमी का कभी बुरा बच्चा होता है। अच्छे आदमी का कभी अच्छा बच्चा होता है, कभी बुरे आदमी का बुरा बच्चा होता है। चारों चीजें संभव हैं और होती हैं। हिरण्यकश्यप के गोद में, हिरण्यकश्यप के पत्नी के गोद में जो बच्चा आया, जब गोद में ही था तो नारद मुनि ने उपदेश दिया था, तो नारद मुनि की कृपा से प्रहलाद शुद्ध भक्त बने। लेकिन वास्तव में प्रहलाद भी तो भगवान के नित्य भक्त ही हैं, इसलिए पिछले जन्म के संस्कार तो थे ही। इस तरह से हमें जानना चाहिए कि भगवान की लीला को करने के लिए भगवान ने प्रहलाद को हिरण्यकश्यप के पुत्र के रूप में प्लेसमेंट कर दिया। महाराज अंग थे, बहुत धार्मिक थे, भक्त थे, लेकिन उनका एक बहुत दुष्ट पुत्र हुआ वेण, इतना दुष्ट हुआ कि ब्राह्मणों को उसकी हत्या करनी पड़ी। तो दोनों देखे जाते हैं संसार में। और प्रश्न शायद पीछे किसी के? प्रभु की श्री श्री राधा गोकुलानंद की, श्री श्री गौरताय की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, गौर प्रेमानंदे।